प्रातः क्लास चल रहा था, एक चार 1967 शनिवार को पांचवे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी। शिव बाबा का जब परिचय देना होता है, माना गॉड का परिचय देना होता है, तो ये बताना है। और बार बार यही परिचय मिलता है कि तुम योग में रहते हो। किसके साथ? शिव बाबा जिसे कहा जाता है, वो है साकार और निराकार का मेल। शिव माने ज्योतिबिंदु निराकार, और बाबा माने साकार ग्रैंडफादर, दोनों का मेल। और वो शिव है त्रिमूर्ति शिव। वो तीन मूर्तियों के साथ आता है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो उसकी यादगार में त्रिमूर्ति हाउस बनाते हैं, या त्रिमूर्ति रोड नाम रखते हैं। तो क्या तीन मूर्तियों का बताया हुआ रास्ता है, या एक मूर्ति का बताया हुआ रास्ता है? रास्ता तो एक होना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि तीन मूर्तियों में ऊंचते ऊंच मूर्ति कौन? कहते तो हैं भक्ति मार्ग में ब्रह्मा देवताई नमा, विष्णु देवताई नमा, फिर कहते हैं शंकर देवताई नमा। ऐसे कहते हैं, शंकर महादेव कहते हैं, विष्णु और ब्रह्मा को देव कहते हैं। तो साबित हो जाता है कि तीनों मूर्तियों में मुख्य मूर्ति कौन सी है? महादेव। तो महादेव है जिसमें तीनों मूर्तियां समाई हुई हैं। भक्ति मार्ग में चित्र दिखाते हैं तो शिव नेत्र दिखाते हैं, शंकर की मूर्ति में किसकी यादगार? शिव निराकार की यादगार शिव नेत्र। फिर चंद्रमा दिखाते हैं, ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र की यादगार। जो कृष्ण चंद्र चंद्रमा की रोशनी घटती बढ़ती है ना, कभी 16 कला संपूर्ण, कभी कलाहीन, कभी दूज का चांद। तो शंकर के मस्तक पर कौन सा चांद दिखाते हैं? कम कला वाला या संपूर्ण कला वाला? इसका मतलब है कि शिव है ज्ञान सूर्य, और और शंकर है ज्ञान सागर, वो सागर भी तब बनता है जब शिव के साथ योग लगाते लगाते संपन्न स्टेज प्राप्त करता है शिव समान, क्योंकि शिव जो ज्ञान सूर्य है वो सागर से धरणी से चंद्रमा से सितारों से सदैव डिटैच रहता है। कभी अटैचमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं सूर्य। परंतु सागर का तो धरणी के साथ अटैचमेंट रहता है। तो बताओ क्या अंतर हुआ? शिव ज्ञान सूर्य में और सागर में क्या अंतर हुआ? वो भी ज्ञान सूर्य है, वो भी ज्ञान सागर कहा जाता है। सूर्य से सारी दुनिया को रोशनी मिलती है, सागर पृथ्वी सितारे चंद्रमा एक सूर्य से रोशनी लेते हैं, परंतु सूर्य जो सदैव डिटैच है डिटैच होने के कारण किसी के लगाव झुकाव में आता ही नहीं, तो उसकी रोशनी क्षीण होती है क्या? जो लगाव झुकाव में आएगा तो क्षीणता आएगी। दुनिया के जितने भी धर्म पिताए हैं, ऊंचते ऊंच धर्म पिता हो अल्लाह बल्दीन और चाहे छोटे मोटे धर्म पिताए हो, सबको संग का रंग लगता है। इसलिए सबके अंदर क्षीणता आती है, क्षरित होते हैं। एक ज्ञान सूर्य है जो कभी क्षरित नहीं होता, क्योंकि लगाव भी नहीं आता, लगाव झुकाव में नहीं आता, इसलिए उसको संग का रंग भी नहीं लगता। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, जन्म मरण का चक्र उनको लगता है जो कर्म इंद्रियों से अटैचमेंट में आते हैं। यह मन बुद्धि से अटैचमेंट में आते हैं, परंतु इन सितारों में चंद्रमा में धरणी में और सागर में पहाड़ों में नदियों में सरोवरों में ऐसा कौन है जो सारी पृथ्वी को अटैचमेंट में ले लेता है? सारी धरणी उसमें समा जाती है, शास्त्रों में लिखा है, जब महाविनाश होता है तो सागर इतना विकराल रूप धारण करता है कि सारी पृथ्वी पर जलमयी हो जाती है। और सभी प्राणी मात्र, क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब खलास हो जाते हैं। आत्मा तो सबकी अविनाशी है, तो क्या खलास हो जाते? शरीर खलास हो जाते। लेकिन क्या सागर भी खलास हो जाता? सागर खलास नहीं होता। और जब खलास नहीं होता तो सूर्य की सारी रोशनी किसके ऊपर पड़ती है? ऐसे ही वो तो जड़ सागर है, जड़ सितारे हैं, जड़ धरणी है, जड़ सूर्य है, और आत्माएं तो चैतन्य है। उन चैतन्य आत्माओं के बीच चैतन्य ज्ञान सूर्य है, जो सदा डिटैच रहता है। इस संसार में भी आता है, जब ये दुनिया में जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं सब कलाहीन हो जाती। जैसे चंद्रमा में सारी कलाएं कलाहीन हो जाती हैं, तो चंद्रमा में घोर अंधियारा फैल जाता है। इसी तरह इस सारी सृष्टि में घोर अज्ञान का अंधकार जब फैल जाता है, किसी को कुछ भी सच्चाई का पता नहीं रहता, तब वो ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आता है और आकर के उसी ज्ञान सागर को पकड़ता है। जिस ज्ञान सागर में वो शक्ति है कि सब उसी में समा जाते हैं। धरती के सितारे भी सागर में समा जाते हैं। हम बच्चे धरती के सितारे हैं ना, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सितारे रूपी आत्माएं हैं, परंतु ज्ञान की रोशनी से चमकने वाले सितारे 9 लाख ही गए हुए हैं, जो दिन के सितारे भी हैं और रात के सितारे हैं। रात के ज्ञान सितारे आधे और दिन के सितारे भी आधे। अंतर क्या है? रात के जो चैतन्य ज्ञान सितारे हैं वो अपनी रोशनी को चंद्रमा में तिरोहित नहीं करते हैं पूरा। अपना प्रकाश भी दिखाते रहते हैं और दिन के सितारे अपनी ज्ञान की रोशनी नहीं समझते। उनको ये ज्ञान रहता है कि जो भी हमारे अंदर ज्ञान की रोशनी है वो ज्ञान सूर्य की दी हुई रोशनी है, चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव। इसलिए वो सूर्यवंशी सितारे कहे जाते हैं, क्योंकि सूर्य को महत्व देते हैं। सूर्य को महत्व देने वाले वो सितारे सारे संसार को उजागर करते हैं। जैसे जड़ सूर्य सारे संसार को उजागर करता है ना, रोशनी देता है ना, ऐसे ही ये ज्ञान सितारे हैं, दिन के सितारे, सूर्यवंशी सितारे। जो 4.5 लाख हैं और वो 4.5 लाख शुद्ध सूर्यवंशी सितारे उनमें चंद्रमा से निकलने वाले 4.5 लाख सितारे और हैं। जो अपनी रोशनी को सूर्य के सितारों में मर्ज कर देते हैं, मने कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी जो हैं वो 16 कला संपूर्ण तो नहीं बनते लेकिन कम कलाओं वाले बनते हैं। जन्म वही जन्म रोशनी कम होती जाती है, ज्यादा से ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों की 84 पीढ़ियां हैं जो 84 का चक्र गाया हुआ है। इस 84 के चक्र में जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो ही हैं जो ज्ञान सूर्य की रोशनी में अपने रोशनी को मर्ज करती हैं। अपना अलग आधिपत्य नहीं जमाती। जैसे भारत में परंपरा पड़ी हुई है, बच्चे कोई भी दुकान खोलेंगे, फर्म खोलेंगे, तो अपना नाम आगे नहीं रखते। भारत में ये परंपरा है आदि से ही, सच्ची के आदि से। किसका नाम रखते? बाप का नाम आगे रखते। रामचंद्र एंड संस कंपनी, बाप का नाम बाला करते। और चंद्रमा भी सूर्य से रोशनी लेता है, रोशनी लेकर 16 कला संपूर्ण तो बनता है परंतु अंत में जाकर बनता है। पुरुषार्थी जीवन में घटती कला में जाता है, जीवन रहते रहते जो पुरुषार्थ करता है कैसी कला में जाता है, क्षीण होती हुई कला में जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप को नहीं पहचानता। फिर जब धीरे धीरे शरीर छोड़ने के बाद बाप को पहचानता जाता है तो पूरी पहचान होने के बाद 16 कला संपूर्ण बनता है। और दूसरी पीढ़ी शुरू होती है, ज्ञान सूर्य जब तक इस सृष्टि पर रहता है तो पहली सीढ़ी, पहली पीढ़ी और ज्ञान सूर्य के जाने के बाद फिर कलाएं क्षीण होने लगती हैं। वो कलाएं सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं क्षीण होती, कुछ शूटिंग पीरियड में ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो वापस जाने से पहले बच्चों को आप समान बना कर जाता है। जो बच्चा बाप समान बनता है 100%, उसको अपना टाइटल देकर जाता है। जैसे अटक होती है ना, कोई शर्मा, कोई भारद्वाज, कोई शुक्ला, कोई क्या, तो ये अटक किससे मिलती है बच्चे को? बाप से। ये परंपरा कहां से शुरू हुई है? हाँ, ये ज्ञान सूर्य जब आता है तो जिसको संपूर्ण ज्ञान देता है, या यूं कहें कि वो नहीं देता, वो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाता है, रास्ता बताता है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने वालों में नंबर वन, पुरुषार्थ करने वालों में जो नंबरवार हैं, उनमें जो बच्चा 100% पुरुषार्थी है, ऐसे बच्चे को अपना टाइटल सूर्य का देकर जाता है। और वो टाइटल किसे मिलता है? मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि के बीच में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो बड़ा बच्चा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तो उनके बीच जो बड़ा बच्चा है उसको वो सूर्य का टाइटल मिलता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों में राम को कौन से वंश का बताया? सूर्य वंश का बताते। भले त्रेता में जो राम का नाम दिया हुआ है उसे भी रामचंद्र कहते हैं, परंतु वो तो घटती कला का 14 कला संपूर्ण राम है, सूर्य कैसे हो सकता है? इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में है राम वो त्रेता कला, त्रेता वाला नहीं, क्या त्रेता में तो दो कलाएं कम हो गई, घटती कला वाला है, वही राम वाली आत्मा जब चारों युगों रूपी चार सीन के ये विशाल ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है पुरुषोत्तम संगम युग में, जहां पुरुष रूप आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, वो है मनुष्य आत्माओं के बीच उत्तम से उत्तम आत्मा, हीरो पार्टधारी राम वाली आत्मा। कौन सा पुरुषार्थ? याद का पुरुषार्थ। क्या याद की बड़ी भारी भलेहारी है, बड़ा प्रभाव है, कोई भी मनुष्य, कोई भी नर या नारी इस प्रभाव को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। पुरुष जब मरता है तो किसकी याद में मरता है? जो स्त्री का जन्म मिलता है, स्त्री की याद में शरीर छोड़ता है, क्योंकि सारा जीवन प्रैक्टिस की है स्त्री के तन से सुख लेने की, तो अंत में क्या याद आ जाता? स्त्री का तन याद आ जाता है, स्पेशल अंतमते सोगते हो जाती। ऐसे ही स्त्री जब शरीर छोड़ती है तो अंत समय में उसे पुरुष चोला याद आ जाता, उसका रिजल्ट क्या होता? अंतमते सोगते पुरुष का जन्म हो जाता। तो देखो कितनी बड़ी बलियारी है याद की, याद से कुछ भी हो सकता है। याद माने योग, मन बुद्धि का लगाव, अटैचमेंट। तो बताया कि आत्माओं के बीच में जो एक सुप्रीम सोल है, जिसे अंग्रेजों में कहा जाता है सुप्रीम गॉडफादर, वो सुप्रीम गॉडफादर आत्मा है निराकार, तो उनका फादर भी निराकार। निराकार का मतलब बिंदु, बिंदु छोटे से छोटा खींचा जा सकता और बिंदु बड़े से बड़ा आकार भी धारण कर सकता। इसलिए भारत में उसकी यादगार दिखाते हैं, लिंग के रूप में बड़ा लिंग बना देते हैं और बिंदु के रूप में छोटा सूक्ष्म ज्योति बिंदु। इसलिए ज्योमेट्री में बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं बताई जाती, न मोटाई बताएंगे, न लंबाई बताएंगे, न ऊंचाई बताएंगे, कुछ नहीं। उसको कहते हैं निराकार, अव्यक्त, देखा माने नहीं, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई दे, माने आंखों से भी दिखाई नहीं देता। अरे आंखों की तो बात छोड़ो, मलेरिया के कीटाणु इन आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन डॉक्टर लोग यंत्रों से तो देखते हैं, लेकिन ये आत्मा इतनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, जिसे गीता में बताया अणियान सम्मन स्मरेत्य है, इतना अनुरूप, जैसे वैज्ञानिकों ने अणु को काट काट करके छोटा करके इतना पावरफुल बना दिया कि एटम बम बन जाता है, सारी दुनिया को नष्ट कर देता है, इतनी पावर है सूक्ष्म में। इसलिए कहते हैं अकल बड़ी कि भैंस, कौन बड़ा है? अकल बड़ी, अकल माने बुद्धि, बुद्धि माने आत्मा, और आत्माओं के बीच में मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे सूक्ष्मते सूक्ष्म है सुप्रीम सोल, सभी आत्माओं का बाप, बाप माने जीरो, बाप माने ही जीरो बिंदु, बाप माना ही बीज। जैसे कोई वृक्ष होता है ना, तो कोई वृक्ष का बीज बहुत सूक्ष्म होता है। हमारे यहाँ एक बीज है भारत में खास, उसे कहते हैं बड़ा वृक्ष, क्या नाम दिया? बड़ा वृक्ष, वृक्ष इतना बड़ा और बीज इतना सूक्ष्म। तो ये यादगार है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की, जिसका गीता में वर्णन है ऊर्धम मूलम मद शाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम्। ऐसा अव्यक्त वृक्ष है आत्माओं का, वो आत्माओं का वृक्ष जब संपूर्ण बनता है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देता। ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख सकते हैं, वो वृक्ष तो दुनिया में जड़ होते हैं, और ये चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है मनुष्य आत्माओं का। तो ये बहुत बड़ा है, गीता में इसका बड़ा रूप विराट रूप दिखाया है, लेकिन मनुष्यों ने समझ लिया है वो कृष्ण बच्चे का विराट रूप है। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि होता है, सालम बुद्धि तो नहीं होता, सगीर बुद्धि कैसे हो जाएगा? तो कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है पहला, क्या कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है, संपूर्ण सोलह कला संपूर्ण बनने वाला, साकार है या निराकार? साकार बच्चा है, साकार सृष्टि का, लेकिन साकार बच्चा साकार बाप से पैदा होगा या निराकार से पैदा होगा? तो जरूर है कि सोलह कला संपूर्ण सतयुग में जो सृष्टि होती है, जो शास्त्रों में लिखा है, तो उसका बाप ज्यादा पावरफुल होगा या सोलह कला ही होगा? तो वो है कलातीत कहा जाने वाला। शास्त्रों में कहा गया है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, वो कलाओं से परे है। क्योंकि इस सृष्टि में कलाएं होती हैं, सृष्टि जब आरंभ हुई थी तो उससे पहले इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि में, पहले नहीं, सृष्टि के एकदम आदिकाल में पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं। क्या, कहां से आया? पीपल के पत्ते पर आया। पीपल का पत्ता की नवैया कहीं होती है? इतनी हल्की फुल्की है नवैया, और उसमें कृष्ण बिठैया, और वो भी बड़े आराम से अपना अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया गर्भ महल में। क्योंकि आज की दुनिया में तो गर्भ जेल होती है। सतयुग त्रेता तो राम कृष्ण की दुनिया थी, देवताओं की, वहां तो दुख का नाम निशान होता ही नहीं। तो वहां तो वो बच्चा बड़े आराम से जन्म से ही, वहां रोते हुए बच्चे थोड़े ही पैदा होते हैं, बड़े आराम से गर्भ महल में पड़ा हुआ है, गोल गोल गर्भ महल। पीपल का पत्ता माता के पेट के रूप में दिखाया गया है। पत्ता क्यों दिखाया, पीपल का क्यों दिखाया? क्योंकि पीपल का ही एक पत्ता होता है जिसकी डंडी बड़ी लंबी होती है, और थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो जोर से हिलेगा। माना ये षष्ठी रूपी वृक्ष के पहले पत्ते की मां का हिसाब बताया। जिस षष्ठी रूपी पहले पत्ते की जो मां है, वो ऐसी मां है जो थोड़ा सा माया का झोंका आता है हर बुरी तरह से हिलने लग पड़ती है। जैसे हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर आंध्र प्रदेश के किनारे किनारे बहुत फैला हुआ है, जिस प्रदेश के वासी आंध्र कहे जाते हैं, बहुत तूफान आते हैं। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। और वहां के वासी जब तूफान आने वाले होते हैं तो बहुत हिलते डुलते हैं, सारी फसल चौपट हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो ऐसी तूफानों के बीच समंदर में ज्ञान सागर में वो हल्की फुल्की नवैया जोर से डोलती है पीपल के पत्ते की मुआफिक, और दुनिया वाले समझते हैं कि अब ये नवैया और इसका बिठैया गया कि गया, क्या सोचते हैं? नवैया और नवैया का बिठैया गया कि गया। लेकिन दुनिया वाले तो बेचारे जानते ही नहीं कि जो पीपल के पत्ते पर माँ के गर्भ में बिठैया बच्चा है वो बच्चा किसका है, दुनिया नहीं जानती। क्योंकि इस दुनिया में जो द्वापर कलयुगी दुनिया हम देखते हैं, इस दुनिया में तो देहधारी धर्म पिताओं का प्रभाव हो गया। जिन धर्म पिताओं ने भगवान को निराकार ही मान लिया कि भगवान तो निराकार है, हम साकार होते हैं और भगवान सिर्फ निराकार होता है। लेकिन वो भगवान बड़ा पावरफुल होता है, तो हम उस निराकार के बच्चे हम भी बड़े पावरफुल हैं, और इसे अहंकार में आकर के एटम बम बना के रख लेते हैं। ऐसी तुच्छ बुद्धि बन जाती है कि ये भी नहीं सोचते कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस डाली पर हम बैठे हुए हैं, वो डाली ही काटेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। ऐसी दुनिया के जो धर्म पिताएं हैं वो इस दुनिया में ऐसा वाइब्रेशन फैला देते हैं कि भगवान तो निराकार है, हम साकार हैं, हम ही इस दुनिया में सब कुछ हैं, भगवान तो कोई चीज है ही नहीं। बड़े नास्तिक बन जाते, खुदा खुदा करते हैं, गॉडफादर गॉडफादर करते हैं, बोलते भी हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफ्ताब बनाया, सूर्य बनाया, अल्लाह मियां ने चांद बनाया, अल्लाह मियां ने धरणी बनाई। अरे जो कुछ बनाया वो सब साकार बनाया, और बनाया किसने? निराकार ने बनाया। अरे घड़ा साकार है तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार भी कैसा होगा? साकारी होगा। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। उन धर्म पिताओं ने सारी दुनिया को नास्तिक बना दिया, और खास करके उन धर्म पिताओं से प्रभावित हुए थे भारतवासी, जो भारत मातृ देश कहा जाता है। माताओं में ये खास आदत होती है, कोई भी कोई बात सुनाएगा उस सुनी हुई बात का आगा पीछा नहीं करेंगे बुद्धि से, जो भी जिसने सुनाया सत्य वचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान, मान लेते रहे। और यही कारण है कि भारतवासी ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हिस्ट्री में, कोई दूसरे धर्म वाले भारतवासियों में कन्वर्ट नहीं हुए, सिवाय लास्ट में आने वाला जो कमजोर धर्म है आर्य समाज। तो ये हवा फैला दी दुनिया में कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर जलमयी के बीच कृष्ण बच्चा इस षष्ठी पर आया, लेकिन कहां से आया, किसने जन्म दिया, ये कुछ भी पता नहीं। ऐसा ज्ञान अंधकार जब इस दुनिया में पनपते पनपते एक लास्ट स्टेज को पहुंचता है कि सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है, तब की यादगार है महाशिवरात्रि। बड़े ते बड़े अज्ञान अंधकार की कल्याणकारी रात्रि, शिव माने कल्याण। उस समय वो निराकार आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आकर बताता है, इस सृष्टि के सभी मनुष्य मात्र नंबरवार इस बात को समझते जाते हैं कि हम देह नहीं है, हम पांच तत्वों का पुतला नहीं है, पंचभूत जिन्हें कहा जाता है पंचभूतों की औलाद नहीं है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांच भूतों का पुतला नहीं है जो अभी तक हम समझते आए। हम भौतिकवादी बन गए, पंचभूतों का ही आलोड़न करते रहे, पंचभूतों से शरीर से अलग कोई आत्मा होती ही नहीं, ऐसे समझने लग पड़े। तो ऐसे अज्ञान अंधकार में डूबने वाले मनुष्य मात्र को वो आत्माओं का बाप आत्मलोक से सृष्टि पर आकर के बताता है कि तुम देहधारी धर्म पिताओं के बच्चे नहीं हो जो अपन को देह समझे बैठे, और तुमको भी पक्का कर दिया कि तुम देह हो। वास्तव में तुम निराकार आत्मा हो, ज्योतिबिंदु, और निराकार आत्माओं को निराकार बाप ही आकर के जन्म देते हैं, समझाते हैं कि तुम ज्योतिबिंदु निराकार आत्मा हो। आत्माओं का बाप आत्मा, बिंदु का बाप बिंदु, और साकार का बाप साकार। रूप तो एक ही जैसा होगा बाप और बच्चे का, निराकार बाप निराकार बच्चा, साकार बाप साकार बच्चा। सांप लंबा तो बच्चा भी लंबा, सांप मोटा ताजा तो बच्चा भी हाथी की तरह मोटा ताजा। बाप बच्चे का रूप तो एक जैसा होता है, लेकिन वो बाप जो आत्माओं का बाप है वो तुरिया बाप है, उसका जैसा बाप और कोई आत्मा हो ही नहीं सकती। वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का वासी है, ऊंचे ते ऊंचा काम करता है इस सृष्टि पर आकर, इसलिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, क्योंकि काम ऊंचा करके जाता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं सब काम के आधार पर है। युधिष्ठिर, जिंदगी का जो युद्ध है उस युद्ध में स्थिर रहने वाला, हिलने डुलने वाला नहीं। दुर्योधन, दुष्ट, दुह माने दुष्ट, योधन माने युद्ध करने वाला। धृतराष्ट्र, राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धरली, जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया। टाटा बिरला क्या है आज की दुनिया में? टाटा बिरला ने क्या किया? चालाकी से सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और दुर्योधन दुशासनों जैसों को संरक्षण दे दिया। हम तुमको ढेर पैसा देंगे, क्या करो? वोटिंग में जीत के दिखाओ। और वो जीत जाते रहे। राजा बन के बैठ जाते। अब वो दुर्योधन दुशासन राजा हैं, जो धृतराष्ट्र के इशारे पैसों पर नाचते हैं, वो किसके कंट्रोल में चलेंगे? है पूंजीवादियों की संतान हुए या गरीबों की दुनिया देखेंगे? वो तो पूंजीवादियों की औलाद है, उन्हें तो वोटिंग में जीतना है, और वोटिंग में जीतने के लिए उन्हें पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, जो धृतराष्ट्र मुहैया कराता है। तो देखो ऐसे धृतराष्ट्र को शास्त्रों में दिखाया है कि वो अंधे हैं, देह अहंकार में अंधे हैं। वो समझते हैं कि इस देह के कर्म इंद्रियों से जो पैसा कमाया गया उल्टे तरीके से या सुलटे तरीके से, वो पैसा ही दुनिया में सब कुछ है। लेकिन नहीं, इस देह के ऊपर कंट्रोल है आत्मा का, जिसे बुद्धि कहा जाता है। और हर मनुष्य में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है। मनुष्यों के बीच में एक ऐसा मनुष्य भी है इस संसार में, जिसे सभी धर्म पिताओं ने माना है। मुसलमान आदम के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियंस एडम के रूप में मानते हैं, जैनी लोग आदिनाथ के रूप में मानते हैं, हिंदू लोग आदि देव के रूप में मानते हैं। और कोई धर्म पिता और उनका फॉलोअर्स अपन को आदम एडम आदिदेव आदिनाथ नहीं कहता। कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता। इसका मतलब है कि उस आदम के पुरानेपन के हिसाब से उसको सब भूले हुए हैं। सारी मनुष्य सृष्टि आदम के पुरानेपन के कारण भूल गई, बाप को ही भूल गए। जब ऐसी सृष्टि की हालत हो जाती है, तब मनुष्य सृष्टि में जो बाप को भूलने के कारण बच्चों में झगड़े फसाद पैदा होते हैं, त्राहि त्राहि होने लगती है, सब दुखी हो जाते हैं, तब आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु आत्मलोक से इस सृष्टि पर आता है। जिस आत्मलोक को मुसलमान भी मानते हैं अर्श, खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अंग्रेज लोग भी मानते हैं आत्माएं सुप्रीम वो बोर्ड की रहने वाली हैं, सोल बर्ड आत्मलोक से आती है। हिंदू भी मानते हैं, उसको कहते हैं परमधाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, पार लोक, इस दुख की दुनिया से भी पार स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से भी पार अमर लोक, जहां सभी अमर आत्माएं रहती हैं, वहां मरने और जीने का सवाल नहीं। वहां न कोई जन्म लेता, न किसी की मृत्यु होती। उस परम धाम का वासी, ऊंचे से ऊंचे धाम का वासी, आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है और मनुष्य सृष्टि के बाप आदम, एडम, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, उसका परिचय देता है सारी मनुष्य सृष्टि को। दुनिया नहीं जानती कि जो मनुष्य सृष्टि का परिवार है, इस परिवार का बाप कौन है। दुनिया भूल जाती है क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी बात हो गई। और देहधारी मनुष्य गुरुओं ने अपनी बेवकूफी छुपाने के लिए कि कोई ये न पूछे कि इस दुनिया की आयु कितनी है, चारों युगों की टोटल आयु कितनी है, अगर पूछेगा और छोटा रूप बताएंगे तो बताएंगे हिसाब बताओ, सत्युग में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, द्वापर में कितने जन्म, कलयुग में कितने जन्म, तो हिसाब बताना पड़ेगा। इसलिए बोल दिया लाखों वर्ष की आयु होती है इस सृष्टि की। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों की आयु लाखों वर्ष। और उस पर एक और झूठ बोलना पड़ा, भयंकर झूठ, कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में से पसार होती है। और 80 लाख योनियों में से पसार होगी तो जरूर मनुष्य सृष्टि की आयु लंबी होगी, लाखों साल। लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का जानने वाला है, और जो जानने वाला हो वो दूसरों को जानकारी दे तभी तो जानने वाला हुआ। जानकार है लेकिन दूसरों को जानकारी नहीं देता तो उसे जानकार कहेंगे? वो जो त्रिकालदर्शी है वो इस सृष्टि पर आता है तो तीनों काल का पूरा ज्ञान देता है, और उसका ज्ञान किताबें पढ़ करके ज्ञान दाता नहीं बनता है, उसका ज्ञान अखंड ज्ञान है। त्रिकालदर्शी भी है और अखूट ज्ञान का भंडारी है। किताबों का ज्ञान तो बंधा हुआ होता है, ईश्वरीय ज्ञान किताबों के पन्नों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे वो ज्ञान सागर है, वो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आता है तो सागर को अपना टाइटल देता है, जो गीता में लिखा है मैं जब आता हूं तो सूर्य को टाइटल देता हूं, सूर्य। जैसे वो स्वयं अखूट भंडार है, उसका कोई भी तह तक नहीं जा सकता। उस अखूट भंडार का कहां आदि होता है, कहां अंत होता है, कोई नहीं जानता। ऐसे ही वो इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के जिस बाप को ज्ञान देता है वो अखूट ज्ञान का भंडारी बना देता है। इसलिए दुनिया में आज के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से लेकर के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सागर की गहराई को आज तक किसी ने नहीं नापा है। जैसे जड़ सूर्य की रोशनी को कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही ज्ञान सूर्य के ज्ञान की रोशनी को दुनिया में कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो चैतन्य ज्ञान सागर है मनुष्य सृष्टि के बीच में, वो जब पुरुषार्थ करके याद करते करते बाप समान बनता है, आत्माओं के बाप समान, तो वो अखूट ज्ञान का भंडारी बन जाता है। उस ज्ञान से बढ़कर के पावरफुल चीज इस दुनिया में कोई नहीं होती है। इसलिए गीता में लिखा है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यही विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी चीज पवित्र नहीं है और दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। अच्छे से अच्छे काम पवित्रता से होते हैं और बुरे से बुरे कामों में भी सफलता पवित्रता की पावर जिनमें होगी उन्हीं को मिलेगी। और बड़े से बड़ी पवित्रता है ज्ञान की पवित्रता, जानकारी। तो ज्ञान सूर्य का बच्चा ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर में ये सारी सृष्टि जलमयी में समा जाती है। जैसे कोई परिवार होता है तो परिवार के ढेर बच्चे भांति कहां से निकलते हैं, हैं? माता से तो जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म को माता का जन्म का बच्चे का जन्म कहा जाता है, लेकिन वास्तव में माता में कहां से आते हैं, बाप से आते हैं। तो ये ज्ञान सागर है, चैतन्य ज्ञान सागर। कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा है और वो है आदम, एडम, जिसको सारी सृष्टि भूल जाती है, मनुष्य सृष्टि। वो आत्माओं का बाप आकर परिचय देता है कि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। जिस मनुष्य शक्ति के बाप को इस शक्ति रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बनाना होता है, हीरो पार्ट धारी तो है, जन्म जन्मांतर उसने हीरो पार्ट बजाया है। क्या छोटा मोटा पार्ट नहीं बजाया, परंतु रह करके पार्ट बजाया, कोई नहीं जाना कि ये मनुष्य शक्ति का ये अमुक व्यक्ति जो है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हस्ती है। हिस्ट्री में बीसियों बार देखा भी होगा, दो हजार साल पहले लगभग अशोक का राज्य हिस्ट्री में था ना, हिस्ट्री ने, हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने उसको टाइटल दिया अशोक महान। क्या टाइटल दिया? अशोक महान, सम्राट अशोक। दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट, जिसको कोई नहीं हरा सका। क्या किसी ने हराया? नहीं। ये द्वापर युग की बात। अभी कलयुग में आ जाओ, हिस्ट्री में एक और टाइटलधारी हुआ जिसको महान टाइटल दिया गया दुनिया में। क्या नाम है? नहीं, अकबर महान। दुनिया वालों ने टाइटल दिया हिस्ट्री में, और दुनिया ने माना भी। सारी दुनिया में हिस्ट्री फैल गई अकबर महान, क्योंकि बड़ा सम्राट बना। इंडिया का इतना बड़ा सम्राट कि ढेर के ढेर हिंदुओं को उसने अपनाया और अपने में मिलाया। सब तरीके से संबंध जोड़े। लेकिन दुनिया ने नहीं जाना कि वो अकबर महान लाखों की सेना लेकर जब चलता था आक्रमण के लिए, तो किससे मात खा करके गया इंडिया में? महाराणा प्रताप को नहीं जीत सका। लाखों की तादाद की सेना एक तरफ और हजारों की तादाद की मुट्ठी भर सेना एक तरफ, और उन सूर्यवंशियों ने मार के भगा दिया। पूरी सेना हार गई। क्यों? क्योंकि सत्य अडिग होता है। सत्य कोई को कोई भी डिगा नहीं सकता। सत्य अटल अखंड अडोल होता है, झूठ भागता है। ये कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते। सत्य को गॉड कहा जाता है। अंग्रेज लोग का फिक्र है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ माने सत्य। क्यों? क्योंकि वही एक आत्मा है जो 100% सत्य को इस दुनिया में कायम रख पाती है। आत्मा सत्य है, इसलिए आत्मा अविनाशी है। और आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। वो अविनाशी आत्माओं का बाप इस विनाशी सृष्टि में विनाश होने से पहले, सारी सृष्टि का महाविनाश होने से पहले आता है और आकर के सत्य का ज्ञान देता है। तुम देह नहीं हो, पांच तत्वों का पुतला नहीं हो। क्या हो तुम? ज्योतिबिंदु अविनाशी आत्मा हो। और तुम आत्माओं में से एक ही आत्मा है, अखंड अटल अडोल, जो तीनों कालों में अखंड डोल रहती है, चलायमान नहीं होती। बाकी सब नंबरवार हैं, कुछ न कुछ चलायमान हो जाते। तीनों काल में इस सच्ची रूपी रंगमंच पर मौजूद रहकर पार्ट बजाने वाली सिर्फ एक आत्मा है, जो अपने शरीर से भी इस सच्ची पर मौजूद रहती है।
पांच तत्वों का पुतला इस सृष्टि पर महाविनाश होने के बावजूद भी, महाकाल आने के बावजूद भी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ही पुतला है, साकार मनुष्य सृष्टि का साकार पुतला, साकार मूर्ति जो पांच तत्वों का सार है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये पांच तत्वों का मूल भी नहीं, मूल माने जड़, जड़ का भी बीज है, सार है, उस सार का कभी नाश नहीं होता। तो बताया वो गॉड है जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या तीन मूर्तियां साकार हैं, मूर्तमान हैं या निराकार हैं? मूर्तियां हैं ना, मूर्ति माने साकार, तो निराकार की मूर्तियां कैसे होंगी? वो स्वयं निराकार, उसकी मूर्तियां कैसे होंगी? शिव के तीन बच्चे, तीन बच्चों के साथ आता हूं तो बाप निराकार और बच्चे कैसे हो जाएंगे? वास्तव में वो निराकार ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप को अपना अपना और उस मनुष्य सृष्टि के बड़े बच्चे को परिचय देता है, जो रामायण में लिखा है, राम वाली आत्मा नहीं लिखा है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी, उसने स्वयं ही बता दिया, यही जानो, यही जानो, तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो मनुष्य शक्ति के बीज रूप को, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उस मनुष्य शक्ति के बीज रूप बाप को जानकारी दे देते हो कि तुम मनुष्य शक्ति के बीज रूप बाप हो, आदम हो, एडम हो, और तुमको पहचान देने वाला मैं स्वयं हूं। क्योंकि तुम इस मनुष्य सृष्टि में प्रभाव में आते रहे, संघ के रंग में आते रहे, और संघ के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा पत्थर बुद्धि जैसी बन गई। शरीर तो जड़ होता ही है, लेकिन जड़ शरीर के सुख भोगते भोगते आत्मा संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बन गई। तो वो आकर के परिचय देता है, अपना भी परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम ज्योति बिंदु आत्माओं निराकार का बाप, मैं भी निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं। जिसको अंग्रेज लोगों ने गॉड फादर समझ लिया, मैं गॉड फादर नहीं हूं। गॉड शब्द तीन अक्षरों से बनता है, जी ओ डी, जी माना जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, बी माने डिस्ट्रक्टर, हिंदी में कहते हैं ब्रह्मा स्थापनाकारी, नई सृष्टि को बनाने वाला, जनरेट करने वाला, ऑपरेटर विष्णु पालने वाला, और डिस्ट्रक्टर शंकर। वास्तव में ये जो तीन कार्य हैं, ये मूर्तियों के तीन कार्य हैं, साकार के। वो तो निराकार है, वो सिर्फ आकर के परिचय देता है। स्थापना पालना विनाश नहीं करता, वो अकर्ता है या करता है? अकर्ता है। मैं अकर्ता, इसलिए अभोक्ता। क्या मैं कुछ करता ही नहीं, इसलिए मैं अभोक्ता हूं, भोक्ता ही नहीं। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, वो है इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, वो ही सबसे जास्ती भोक्ता, सुख भी सबसे जास्ती भोगता और दुख भी सबसे जास्ती भोगता। उसमें ताकत है, जिस व्यक्ति में शक्ति होगी वो ही सुख भोगेगा इंद्रियों के, या जिसमें शक्ति नहीं होगी वो इंद्रियों के सुख भोगेगा। शक्ति है तो सुख और दुख दोनों भोग सकता है। ये आत्मा की शक्ति की बात है। क्या शरीर की शक्ति नहीं होती, आत्मा की शक्ति होती है। इसलिए बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में, शरीर भल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। शरीर बुढ़ा सुढ़ा रोगी दुखी परेशान कैसा भी हो, शरीर से देखने में आता है लुंजम पुंजम भज गोविंदम, लेकिन आत्मा पावरफुल है तो लुंजम पुंजम शरीर से भी दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए उस शरीर की यादगार दुनिया के बड़े से बड़ी नाव से की है, पीपल के पत्ते की नाव नहीं। उसको नाम दिया है बड़े से बड़ा जहाज, ब्रह्मवाक्य मुरली में है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। चंद्रमा की कांति वाला क्या उस जहाज में कांति दिखाई पड़ती है? किसकी? ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा उस पर विराजमान है। वेदांत, वेद शास्त्रों का अंत करने वाला, क्योंकि वेद शास्त्र जो लिखे गए हैं वो देहधारी मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, और देहधारी मनुष्य साफ देह अहंकारी, देह अहंकार में आकर झूठा सच्चा जैसा चाहा वैसा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मत मतांतर घुसर दिए। वो एक ही जहाज है, एक ही नवैया है, जिस जहाज पर जो सवार होंगे वो संसार सागर के पार चले जाएंगे। इसलिए बोला रामायण में, शंकर चाप जहाज जेही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार, बाकी संसार सारा डूब जाएगा। उसको जहाज भी बताया, चाप भी बताया। चाप माने धनुष, किसका धनुष? शिव का धनुष। शास्त्रों में क्या नाम दे दिया? शिव का धनुष। किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। अरे शरीर रूपी धनुष जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था, शिव का धनुष कहा गया। ऐसे धनुष को किसने चूरमूर कर दिया? राम। राम वाली आत्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डियों को भी तोड़ मोड़ दिया। दधीचि ऋषि ने क्या किया था? हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी दान कार्य में, देवताओं के कल्याण के कार्य में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। लेकिन उनको भी क्रास किसने कर लिया? राम ने क्रास कर दिया। उसी पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो जहाज कहो, उसको सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया और घर की सफाई कर दी। कैसी कवि की कल्पना है, ऊंचे ते ऊंचा कवि भगवान ही हो सकता है। जिसके लिए कहा जाता है, कै समझे कवि कै समझे रवि, या तो कवि ही अपनी कविता की सही अर्थ को समझ सकता है, या तो ज्ञान सूर्य स्वयं ही सृष्टि पर आ जाए वो कवि की कविता का सही अर्थ कर सकता है, बाकी बिचौलिए जो मनुष्य गुरु हैं वो गीता की सही टीका नहीं कर सकते। तो बताया किसका परिचय देना है? मनुष्य आत्माओं के बाप का परिचय देना है। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो अपने अपने बापों धर्म पिताओं को बाप मानती हैं। क्या भगवान को बाप नहीं मानती? वो नहीं जानती कि हमको भगवान ने पैदा किया और वास्तव में भगवान उनको पैदा नहीं कर पाता। पैदा करना अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म देना। मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना संसार में। पहले परिवार के लोग जानते हैं जिस परिवार में जन्म लेता है, फिर पड़ोसी लोग जानते हैं, फिर गांव वाले जानते हैं, फिर सारे संसार में उसका परिचय मिलता जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में साकार सो निराकार भगवान है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में शिव बाबा दिखाई जाती है, शिवलिंग। वो शिवलिंग जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में बना था सोमनाथ मंदिर में, लिंगाकार लाल पत्थर, और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी की यादगार। उस डायरेक्टर की यादगार नहीं है जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट बजाता है, प्रांटिंग करता है, कभी किसी के सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो साकार है ही नहीं। वो डायरेक्टर है पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला, और हम सब एक्टर्स हैं। हम सब एक्टर्स के बीच में एक है हीरो पार्टधारी। वो हीरो पार्टधारी की यादगार है हीरा। हीरा बेस्ट कीमती होता है। उस हीरे की यादगार रख दी है, बड़े से बड़ा हीरा है। हाँ, को माने कौन है? को है नूर हीरा। वो खुदा का नूर कौन है? वो हीरा कौन है जो डायरेक्ट खुदा का नूर है? को है नूर हीरा। उसकी कीमत कोई आंख ही नहीं सका सकता। वो नूर हीरा अभी विदेशियों के कब्जे में है। क्या इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में? हीरे के लिए वो वाक्य है कि बाप विदेशी बनकर आया है। क्या इस दुनिया में बाप आया तो है, लेकिन क्या बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। माना दुनिया में आया है, विदेशी बनकर आया है। कौन पालना दे रहा है? है? अरे पालना कौन दे रहा है? विदेशी पालना दे रहा है। उन विदेशियों की आज तक यादगार है। यादव, क्या यादव उन्हें कहा जाता है जो ग्वाले होते हैं, दूध दूहते हैं। ये ज्ञान सागर का दूध है। ज्ञान सागर बाप है और उसकी गौएं हैं, उनसे ये ज्ञान का दूध निकलता है। उस ज्ञान सागर गौ के दूध का धंधा करने वाले ग्वालों को नाम दिया है शास्त्रों में यादव। तो यादवों के ऊपर किसका राज्य था? कहते हैं कृष्ण का राज्य था। क्या किसका राज्य था? कृष्ण भगवान का राज्य था। कैसा राज्य था? स्वतंत्र हो स्वतंत्र रहने दो। राज्य के भांतियों को स्वतंत्र छोड़ दिया। चाहो तो मेरी बात मानो और चाहो तो दुर्योधन की बात मानो। तो भगवान की सारी सेना किस तरफ चली गई? हैं? कौरवों की तरफ चली गई। खुद स्वतंत्र बनकर के रहे, खुद कौरवों का साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। ये प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भगवान ने आकर के ये पाठ बजाया है, परंतु मनुष्य गुरुओं ने कृष्ण का बच्चे का नाम डाल दिया। अरे बच्चा कैसे राजयोग की बातें सिखाएगा? जो गीता में बोला गुह्यात् गुह्यतरम् ज्ञानम्, मैं गुह्यते गुह्य राज की बातें बताता हूं, बच्चा सिखाएगा? गुह्य ज्ञान की बातें बच्चा जानता है क्या? अरे बच्चा बड़ा होगा, नौजवान होगा, तब ही तो राज की बातें जानेगा कि मनुष्य जीवन का राज क्या है, मनुष्य के जीवन में क्या सुख है। बच्चा सुख को जानता है क्या? नहीं। और ये तो राजयोग के सुख की बात है, जो राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के और कोई सिखा ही नहीं सकता। वो ऐसा सुख देने वाला सुखदाता है जो इंद्रियों से सुख नहीं मिलता, पंचभूतों से बने शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो सुख नहीं मिलता, उस इंद्रियों के सुख से भी परे का सुख अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाप है। दुनिया में इससे ऊंचा कोई सुख होता ही नहीं। और जो इतना सुख ऊंचे के ऊंचा भोगने का अनुभव करती हैं आत्माएं, वही आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर कंट्रोल करने वाले राजा रानियां बनते हैं। राजा रानियों के परिवार के भांति बनते हैं, जिनकी संख्या शास्त्रों में 16,108 दिखाई गई। वो राजयोग सिखाने वाला प्रैक्टिकल प्रूफ कौन सा है? सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है, या साकार निराकार का मेल है? उस शिव बाबा का परिचय देना है जिसे अंग्रेज लोग कहते तो हैं गॉड फादर। क्या? अरे फादर से तो वर्षा मिलता है, कोई लुंजुम पुंजुम फादर होगा वो भी बच्चों को वर्षा देगा, फादर माने वर्षा। तो अंग्रेजों से पूछो, हेवनली गॉड फादर कहते हो, इससे ही साबित होता है कि वो हेवन बनाने वाला बाप है। हेवन साकार होता है या निराकार होता है? साकार हेवन को बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? साकार हेवन को बनाने वाला साकारी बाप ही चाहिए। हाँ ये है कि जो साकार हेवन को बनाने वाला है वही है निमित्त, क्योंकि ये दुनिया का राज की बात है कि ये दुनिया चार अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। वो नई दुनिया बनाने वाला, सुख की हेवन की स्वर्ग की दुनिया बनाने वाला, वो भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। सतयुग में सतो प्रधान, उसकी यादगार है स्वर्णलिंग। त्रेता में सतो सामान्य, उसकी यादगार है, है? हाँ रजत लिंग, चांदी का लिंग। और द्वापर में ताम्रलिंग। रजो प्रधान। और कलयुग में तमो प्रधान काला। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो ही चार अवस्थाओं से पसार होता है तो सबको चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता। जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता जलमयी सृष्टि के बाद समंदर में दिखाया जाता है पीपल के पत्ते पर, वो भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। सोलह कला संपूर्ण से आरंभ होता है सतयुग में, त्रेता में चौदह कला, द्वापर में आठ कला, कलयुग में कलाहीन हो जाता है। घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में आ जाता है। ऐसी स्टेज सब सारी दुनिया की आती है, उसको कहा जाता है महाशिवरात्रि। छोटी मोटी रात्रि नहीं, ऐसी महान रात्रि जैसा घोर अंधकार कभी दुनिया में न हुआ था न कभी होता है। सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है कि मैं कौन हूं, देह हूं, विनाशी देह। किसी को असलियत का पता नहीं रहता, तब वो सत्य का उजागर करने वाला बाप इस सृष्टि पर आता है, बताता है कि इस सृष्टि में एक ही है जो मेरे आने तक कुछ न कुछ सात्विक स्टेज में रहता है। मेरे आने के बाद वो आत्मा भी चार अवस्थाओं से प्रसार होती है, सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। जब घोर तामसी स्टेज से पसार होती है तो वो आत्मा को ज्ञान का कितना भी बड़ा भंडार मिल जाए तो भी ईश्वरीय ज्ञान के तंत को नहीं पकड़ पाती। क्या तंत है? मुहावरा दे दिया, पवित्र बनो योगी बनो। क्या मुहावरा दिया? पवित्र बनो योगी बनो। 100% योगी बनना है तो क्या करो? पवित्र बनो। पवित्र माने संग के रंग में ना आओ। क्या? कोई के भी संग के रंग में आएंगे तो संग का रंग जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, छरित होने वाली आत्मा हो, पतित होने वाली आत्मा हो, संग के रंग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर जरूर पड़ता है। हाँ, कोई आत्मा के ऊपर धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा और कोई आत्मा के ऊपर तेजी से प्रभाव पड़ेगा। ये भी हिसाब है, कर्मों की गुह्य गति है। कोई भी कर्म तीव्र गति से किया जाएगा तो उसका फल तुरंत मिलता है। जैसे कोई हत्यारा हत्याओं के ऊपर हत्याएं, हत्याएं के ऊपर हत्याएं करता ही चला जाता है तो इसी जन्म में उसको फल मिल सकता है। तीव्र गति से जो कर्म किए जाते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो जल्दी से जल्दी फल देते हैं, फलदायी हो जाते हैं। और जो कर्म धीमी गति से किए जाते हैं, चाहे पुरुषार्थ हो चाहे याद का पुरुषार्थ हो, धीमी गति से याद करेंगे तो देर में फलदायी होगा या जल्दी होगा? देर में फलदायी होता है। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली तुम आत्माओं के बीच में वो कहता है, एक आत्मा ऐसी है जो तीव्र पुरुषार्थी है, दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, धर्म स्थापना करने वाले, उनमें वो अव्वल नंबर धर्म स्थापक पिता है। अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन करने वाला, अव्वल नंबर का धर्म है स्वधर्म। स्व माने आत्मा, कौन सा धर्म? आत्मा के धर्म में स्थिर रहना चाहिए। कुछ भी करो, आत्मा के धर्म में स्थिर रहो, माने आत्मा की स्मृति की धारणा करो। स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, अपनी आत्मा के धर्म में स्थिर रहने वाला श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जीवन जिएगा। आत्मा के अलावा किसी और की स्मृति करेगा तो भ्रष्ट बनेगा। क्या इस शरीर में क्या श्रेष्ठ है? आत्मा ही श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय आंख, उसका भी संग करेंगे तो भी नीचे गिरेंगे, धीमी गति से गिरेंगे, गिरेंगे जरूर। साक्षात्कार से बनाए गए चित्र हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण के चित्र में नर से जो डायरेक्ट नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं संगम युग में, उनके बच्चे सतयुग में राधा कृष्ण दिखाए गए। उसमें दिखाया गया कि राधा कृष्ण को देखती है, कृष्ण राधा को देखती है, किसी दूसरे को नहीं देखती। अभिविचारी दृष्टि है तो भी कलाएं कम होती हैं अगले जन्म में या नहीं होती हैं? कलाएं कम हो जाती हैं। तो संग का रंग जरूर आत्माओं को लगता है, लेकिन कोई आत्माएं हैं कि संग के रंग में आते हुए भी आत्मिक स्मृति में रहती है। उन्होंने आत्मिक स्मृति का ज्यादा अभ्यास किया है। कब ज्यादा अभ्यास किया? जो फाउंडेशन पड़ गया संगम युग में। संगम युगी शूटिंग काल में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो रास्ता बताते हैं। क्या? भले इंद्रियों से कुछ भी कर्म करो, कोई का भी संग करो, लेकिन मन बुद्धि से मुझे याद करो। मुझे का मतलब ये नहीं है मैं ऊपर ही बैठा रहता हूं। मुझे याद करो का मतलब है कि मैं इस सृष्टि पर जब आता हूं तो जिस ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी हीरो पार्टधारी में पार्ट बजाता हूं, उस साकार में निराकार मुझ ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी को याद करो। तो तुम्हारे ऊपर इंद्रियों के संग का कोई रंग नहीं लगेगा। इसलिए गीता में बोला, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम, स्वप माने इस आत्मिक धर्म का थोड़ा भी अनुसरण किया, थोड़ा भी अभ्यास करेंगे कर्म इंद्रियों से कर्म करते समय, तो महान भय से पार हो जाएंगे। तैसे महतो भया, बड़े से बड़े भय से क्रास हो जाएंगे। क्या धर्म? स्वधर्म, आत्मा की स्मृति का धर्म। ये बड़े से बड़ी धारणा है, थोड़ा भी अभ्यास करेंगे। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, थक नहीं जाना है। जैसे अर्जुन कहता है तीसरे अध्याय में, क्या, हे भगवान मुझे इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? तो भगवान कहते हैं, कठिन को सहज बनाने वाला कौन है? भगवान। जो कठिन को सहज बनाने वाला रास्ता बताता है, उस भगवान के बताए हुए रास्ते को याद करो। उसका नाम है सहज राजयोग। कैसा राजयोग? सहज राजयोग। सहज का मतलब है देहधारी मनुष्य गुरुओं ने सहज को कठिन कर दिया। कैसे कठिन कर दिया? उन्होंने बता दिया भगवान निराकार है, भगवान साकार नहीं हो सकता। मनुष्य साकार होते हैं और मनुष्य कभी भगवान नहीं, वो ये जानते ही नहीं कि जिसे मनुष्य कहा जाता है वो मनु की औलाद को कहा जाता है। ब्रह्मा की औलाद जैसे ब्राह्मण, शिव की औलाद जैसे शैव, विष्णु की औलाद जैसे वैष्णव, बढ़ जाती है ना मात्राएं, ऐसे ही मनु की औलाद मानव या मनुष्य क्या बढ़ गया अक्षर। तो बताया कि जो मनुष्य है उसे कहा जाता है जो मन का उपयोग करता है। क्या समझे? मनुष्य माने मन का उपयोग करे तो मनुष्य, मन का उपयोग नहीं करता तो जानवर, हो सकता है उससे भी ज्यादा बदतर हो जाए। जैसे खूंखार जानवर शेर होता है, उसके सामने कोई प्राणी कोई जानवर आ जाता है तो कैसे खूंखार हो करके चीर फाड़ डालता है, छोड़ता है, सोचता है, विचार करता है नहीं। तो मन का उपयोग नहीं करता तो जानवर, मन का उपयोग करता है तो मनुष्य। इसीलिए रास्ता बताया और दुनिया ने भी कहा कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य अगर मन का उपयोग करना बंद कर दे, मन के ऊपर टोटल कंट्रोल कर ले, मन को विचलित न होने दे, मन को चंचल न होने दे, मन रूपी घोड़े को बुद्धि की पूरी लगाम से नियंत्रित कर ले, तो मन कंट्रोल में होएगा या नहीं होगा? मन कंट्रोल में हो जाएगा तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंद्रियां अपने सुख और दुख का अनुभव भी नहीं कर सकेंगे। जैसे मिसाल दिया महबूब कारखाने में जा रहा है, अपनी महबूबा को रास्ते भर याद करता गया। कारखाने जाने के बाद उससे किसी ने पूछा, आपने रास्ते में किसको किसको देखा? अरे मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों भाई, क्यों नहीं देखा? अंधे थे, तुम्हारी आंखें खुली हुई नहीं थी? आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन मन की आंख से मैं किसको देख रहा था? है महबूबा को देख रहा था, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि मैंने रास्ते में किसको किसको देखा। ये गीता में कहा है, इंद्रियाण परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, मनुष्य को जीतने में नहीं आती है, लेकिन इंद्रियेभ्य परम मन है, इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे ये बुद्धि है मनुष्यों के अंदर, लेकिन मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं करते। मनुष्य अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो जैसे स्त्री जाति है ना, पुरुष के मुकाबले स्त्री बुद्धि का उपयोग करती है नहीं करती? पुरुष बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी पार्ट बजाने वाले पुरुषम रूपी आत्माएं हैं, उनमें परम पुरुष वो है। किस आधार पर? वो सिर्फ बुद्धि है, मन का नाम निशान नहीं, इसलिए सदा मन रहता है। क्या कभी बेचैन नहीं रहता, और वो इसीलिए इस मनुष्य शक्ति पर आता है ये बताने के लिए, हे मनुष्यों तुम अपने मन को कंट्रोल करो। क्या करो? मन को कंट्रोल करो, मन को लगाम दो घोड़े को, बुद्धि की लगाम दो। हर मनुष्य में अपने अपने प्रकार की बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग करो, लेकिन भारतवासी ऐसा नहीं करते। जो जो धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, भारतवासियों ने क्या किया है? उन धर्म पिताओं के बहकावे में आ गए। सत्य वचन महाराज, जो जिसने सुनाया, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाया है, ये ब्रह्म वाक्य है मुरली का। इसलिए भारतवासी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहे हिस्ट्री में, दूसरे धर्म के लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। क्यों कन्वर्ट होते रहे? क्योंकि मातृ देश है वो, परम पुरुष जो परम पिता कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर आता है, जिसको कैप्चर करता है। जैसे पुरुष होते हैं ना, तो कोई कन्या माता को कैप्चर करते हैं, नहीं करते? कैप्चर करते हैं, और माता अधीन हो जाती है, कन्या अधीन हो जाती है। बुद्धि नहीं चलती। ऐसे ही वो परम पुरुष परम पिता इस सृष्टि पर आता है, जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है बल पुरुष है, तो भी अपना काम निकालने के लिए नई सृष्टि रूपी परिवार बनाने के लिए उसको नाम देता है ब्रह्मा। तुम अम्मा का काम पहले करो। क्या? हाँ, मां बन करके कार्य करो। और मां में ये कमजोरी होती है। क्या क्या कमजोरी? बुद्धि का उपयोग नहीं करती, बुद्धिहीन हो जाती है। इसलिए वो आता है तो शरीर को कैप्चर करता है, अर्जुन के रथ को कैप्चर करता है, अर्जुन की आत्मा को स्वतंत्र छोड़ देता। तुम मेरी बात मानना चाहो तो मानो, ना मानना चाहो तो ना मानो। उसका नारा है स्वतंत्र हो स्वतंत्र रहने दो। तो रथ के लिए बोला है गीता में, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते। ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है, धारणाओं का क्षेत्र है ये शरीर। इस शरीर को मैं माता का टाइटल देता हूं, नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए माता का नाम देता हूं। काम करना है मुझे। तो आज भी मंदिरों में जाते हैं तो हाथ जोड़ कर क्या कहते हैं? त्वमेव माता। इताबाद में परंपरा कहां से शुरू हुई? सृष्टि के आदि से ही परंपरा शुरू हुई। वो माता जो है उस परमपति परमेश्वर की आज्ञा में बंध जाती है, उसके परिवार को जन्म देने के लिए, उसके परिवार की पालना करने के लिए बंध जाती है। ये कमजोरी है भारत माताओं की खास। लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी कमजोरी है, पुरुष की मजबूरी ही कमजोरी है। क्या? पुरुष अपने पुरुषत्व की शक्ति को जीवन भर सुरक्षित करके अपने पास नहीं रख सकता, उसे भी तलख हो जाती है परम पुरुष को जब वो त्रिकालदर्शी बनता है। कब बनता है? जब तीनों कालों को क्रॉस करने वाला कोई आगे बढ़ता है। कौन? कोई है जो तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है? तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है, मृत्यु को नहीं पाता, उसका शरीर खत्म ही नहीं होता। कौन? भारतीय परंपरा में शास्त्रों में गाया हुआ शंकर। शंकर का जन्म होते किसी ने नहीं देखा, मृत्यु होते किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वास्तव में न मरता है न जन्म लेता है। किसी साकार मनुष्य तन से जन्म नहीं लेता, उसका कोई साकार माता पिता नहीं है। तो वो त्रिकालदर्शी जब तीनों कालों को क्रॉस करता है तब उसे पता लगता है जो जन्म मरण के चक्र से निकला है। जैसे ही पता लगता है वो परिपक्व त्रिकालदर्शी बन जाता। क्या? सत्व परिपक्व स्टेज में आ जाता और उस समय वो रह नहीं सकता, जैसे कोई किशोर अवस्था वाला नौजवान बनता है तो अपने को रोक नहीं पाता, वो सच्ची पर आने के लिए मजबूर है, आता है और माता को टाइटल देता है माता, नई सृष्टि बनाने के लिए। तो मनुष्य सृष्टि की जो पहली पहली शक्ति है उसमें ही ये कमजोरी है। क्या सुनी सुनाई बातों से क्या प्रभावित हो जाना, मनुष्य सृष्टि का बाप जो पहले पहले माँ का पार्ट बजाता है वो स्वयं ही सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि माता का पार्ट है इसलिए प्रभावित हो जाता है। और प्रैक्टिकल में वो पुरुषतन स्वयं माता का पार्ट नहीं बजाता, कोई तीन माताएं हैं जो प्रैक्टिकल में माता का पार्ट बजाती, एक वाक देवी, वाचा की देवी, कौन सी देवी, वाक, वाचा की देवी सरस्वती, बच्ची जगदम्बा सरस्वती किसकी बेटी, ब्रह्मा की बेटी। तो ब्रह्मा की बेटी वाक देवी साकार शरीर धारणी स्त्री चोला और जड़त्वमयी बुद्धि वाली या चैतन्य बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली। जैसे संसार में भी बच्चा पैदा होता है तो जड़ शरीर मां के पेट में पहले तैयार होता है या चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, जड़ शरीर पहले तैयार होता है। तो ऐसे ही वाचा शरीर का अंग है, मुख जो है प्रमुख है इंद्रियों में, मुख्य कार्य करता क्या क्या कहते हैं, मुख खाने वाला एक है क्या, लेकिन सारे शरीर की उससे पालना होती है, एक है लेकिन पालना सारे शरीर की करता है। ऐसे ही मुखिया मुख सो चाहियो, खान पान को एक पाले पोषे सकलांग तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास ने लिख दिया कि जैसे माता सारे परिवार का पालन पोषण करती है, प्यार से पोषण करती है, उसका ये प्यार ही ज्ञान है, विवेक है, इससे बड़ा ज्ञान कोई दुनिया में होता नहीं है। कितना सहन शक्ति से पालन करती है। तो बताया ऐसा मुखिया बनना है, तो कौन हुआ, मनुष्य सच्ची रंगमंच पर पहला पहला प्रैक्टिकल में शरीरधारी मुखिया कौन हुआ, अरे वाक देवी, वाचा की देवी सरस्वती, जिसको शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा की बेटी। संसार में कोई नहीं है तो बेटी ही है, उस बेटी को कार भार सौंप दिया माता के रूप में, उस बेटी ने क्या किया, मुख से जन्म दिया पहले बच्चे को। क्या मुख वंशावली पहला बच्चा पैदा हुआ कौन, प्रजापिता। ब्राह्मण चोटी, सब ब्राह्मणों की ऊंचे से ऊंची स्टेज वाली चोटी, वो ब्राह्मण बच्चा और वो बेटी, दोनों ने मिलकर के मानसी सृष्टि पैदा की। कैसी सृष्टि, मानसी। मानसी सृष्टि में चार पुत्रों को उत्पन्न किया 76 में, आदि में भी, आदि सो अंत में भी। ब्रह्मा की जब 100 साल आयु पूरी होती है, 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था, उसमें 40 साल और ऐड किए, सन 76 आता है, और 76 में चार बच्चे प्रत्यक्ष हुए मानसी सृष्टि से, मनसा के संकल्पों से, मनसा के वाइब्रेशन से। दुनिया में चार आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होती है, चार ब्राह्मण, उनका नाम पड़ता है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें पहला बच्चा ज्ञानी और योगी कहा जाता है, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों का ईश्वर, और योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। वो ज्ञान और योग की शक्ति से सूर्यवंशी सृष्टि उत्पन्न करता है, जिसे कहा जाता है रुद्रमाला आकाश संगठन। रुद्र बत्सों की पैदाइश होती है। क्या, किसकी पैदाइश? रुद्र बत्सों की पैदाइश होती है किसके द्वारा? सनत कुमार तो बच्चा हुआ, वो तो 40 साल बाद की बात, अगले जन्म की, लेकिन पैदा किसके द्वारा हुआ? वाग्देवी, सरस्वती और ब्राह्मण। पहला बच्चा कौन? प्रजापिता। जिस तन में शिव ने प्रवेश किया, उस तन से बेटी पैदा हुई प्रैक्टिकल में, और दोनों ने मिलकर के मानसी सृष्टि बनाई। तो उस मानसी सृष्टि में जो पहला बच्चा है वो क्या कहा गया है? सनत कुमार, जिसके आधार पर सनातन धर्म की स्थापना हुई। उस सनातन धर्म में उस बच्चे का साथ किसने दिया? तो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता नारायण। जो पहला देवता नारायण, तो उसका साथ देने वाली नारायणी कौन हुई? नारायण की साथी नारायणी। नारायण और नारायणी ये दो हुए। नारायणी तो बाद की बात, पहले कौन? नारायण स्वयं, रुद्रमाला का बीज, जिसके आधार पर रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ नारायण से, और उसका अंत होता है वाग्देवी, सरस्वती, जगदम्बा से। क्या, क्योंकि जो पहली आत्मा है, पहला ब्राह्मण, वो पहला ब्राह्मण है पिता, और वो है माता। तो जो माता है उसके लिए गायन है, राज करेगा खालसा। पूरे परिवार के ऊपर कौन राज्य करता है? हैं? खालसा माने पवित्र। कैसी आत्मा? जो शरीर के साथ पार्ट बजाती है, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहती है। इसलिए महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा तो दिखाते ही हैं, लेकिन भ्रकुटी में शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। वो ऐसी संसार की पहली कन्या है आदि देवी, जिसके ऊपर जिस पुरुष की छाप जिंदगी में पहले पड़ती है वो पुरुष जीवन भर कभी क्या भूलता नहीं। चाहे संसार में कितने भी मनुष्यों के संसर्ग संपर्क में आए, संबंध में आए, तो वो पहली छाप भूल नहीं सकती। इसलिए यादगार में जो जगदम्बा है, महाकाली है, उसके मस्तक पर शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव का नहीं, किसका? शंकर की मूर्ति, माने वो मूर्ति दिल और दिमाग पर छा जाती है। इसलिए क्या रिजल्ट होता है, इंद्रियों से कैसे भी व्यभिचारी कर्म करे, लेकिन मन बुद्धि से किसको याद करती है? है बाप को याद करती है, जिस बाप में बापों का बाप समाया हुआ है, स्मृति के आधार पर। इसलिए जैसे कोई याद करेगी ताकत भी वैसे ही आएगी। इसलिए बताया राज करेगा खालसा, वो ज्यादा पवित्र है। खालसा माने खालिस, पवित्र। कैसी पवित्र? लक्ष्मी जैसी पवित्र नहीं, क्या पवित्र वातावरण में रह करके पवित्र बने कोई बड़ी बात नहीं। लोग कीचड़ जैसे या पवित्र कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी इंद्रियों से पवित्र बने, इंद्रियां जो हैं वो लिप्त न हो मन बुद्धि से, तो उसको क्या कहेंगे? पवित्री कहेंगे या पवित्र आत्मा कहेंगे? पवित्र आत्मा। और जो पवित्रता की शक्ति है, महान शक्ति है, वो महान शक्ति से ओतप्रोत जगदम्बा सारे विश्व पर राज्य करती है। क्योंकि ऐसी महान शक्ति जीवन में किसी ने धारण नहीं की। कैसी शक्ति? साकार पिता के साकार संबंध में इंद्रियों के साथ, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, इतने लंबे समय का साथ कोई मनुष्य आत्मा नहीं निभाता, निभाती संगम युग में, शूटिंग पीरियड में, जितना जितना हाँ जगदम्बा ने निभाया। तो संग का रंग नहीं लगता? कहेंगे साकार का संग का रंग लगा। अरे साकार का संग तो लगा, लेकिन साकार ने याद किसको किया? उस निराकार को याद किया ना, तो फायदा होगा या घाटा होगा? फायदा ही फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? सारे संसार के ऊपर राज करती है, कंट्रोल करती है। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में कही, आत्माओं का बाप निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि के बाप को वर्षा देते हैं। क्या अपना वर्षा किसको देते हैं? मनुष्य सृष्टि के बाप को देते हैं, और मनुष्य सृष्टि का बाप जगदम्बा को वर्षा देता है। सारी मनुष्य सृष्टि को कंट्रोल करो, और जगदम्बा फिर नंबर वार बच्चों को देती है, तो भी बात सही साबित होती है। माता के द्वारा बच्चों को दिया जाता है या बाप डायरेक्ट देता है? माता के द्वारा देता है। माता ही स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है, लक्ष्मी को कन्या कहेंगे या माता कहेंगे? लक्ष्मी क्या है? कन्या है, बाद में माता बनती है, वो आदि माता नहीं है। आदि माता कौन है? हैं? जगदम्बा सरस्वती वाक देवी।
ओम शांति।